आप प्रैक्टिकली गूज बम्स आए हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने गजा का नाम लिया। सीरिया की बात कर लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर 11 का वाक्या हुआ था तो बहुत से लोगों को जब पाकिस्तान गए थे मूव भी हुए थे, हमारा कंट्री तो है ना। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो
हेलो
जी आफा जी, अस्सलाम वालेकुम, दिशा नाज कर रहा हूँ
जी।
मैं अभी आपको प्रोग्राम बकायदगी से सुनता हूँ और करामत गौरी साहब को भी सुनता हूँ, और मैं आपको यकीन माने कि आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि आप आज के दिन करामतुल्लाह गौरी साहब को नहीं मधु करें। आप सिर्फ इसलिए कि मुझे मालूम है कि मन की बातें होंगी और इस कामयाबी के वक्त हमें बहुत सी चीजों को नहीं बोलना चाहिए और अच्छी तरह बोलना चाहिए। यहाँ पर पहले पूरा प्रोग्राम सुना करामतुल्लाह गौरी साहब का, उसको कोई भी ऐसी मुस्बत बात पाकिस्तान के हक पे नहीं बोली उन्होंने, मुझे बहुत अफसोस है। ये कि आप कमिंग टू द पॉइंट, आप हालात देखें, इन हालात के अंदर क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, आपको क्या बात करनी चाहिए, वो तो अपनी पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं, उसको उसे कोई शवाहिद नहीं है, कोई गवाह नहीं है उसके, वो उनके अपने ख्यालात है, नहीं ख्यालात को इस तरह से इजहार करना। यहाँ पर पूरी मुल्क जो है हमारा वो कामयाबी के जश्न मना रहे हैं और वो जो है उल्टा उल्टी बातें कर रहे हैं, मैं तो उसको बहुत अफसोस हुआ। बहुत नाइस आदमी, वेरी वेरी नाइस जेंटलमैन, आई लव हिम, बट एट द मोमेंट व्हाट ही इज सेइंग इज टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट।
बहुत शुक्रिया सर, आपका पैगाम मनोहन एयर पे गया, आई डिड नॉट इंटरप्ट एट ऑल, थैंक यू वेरी मच। वकार खान साहब आपने भी कॉल कर दिया बट जी अस्सलाम वालेकुम जी।
जी अस्सलाम वालेकुम,
अपना नाम बताइए।
जी मैं वफा बात कर रहा हूँ। करामत गौरी साहब जो है उनकी पॉलिटिक्स में नजर बहुत गहरी है और वो जो बात करते हैं हकीकत पे बात करते हैं और उन्हें जो हकीकत होती है वो बयान करते हैं, तो मेरा ख्याल है उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो हकीकत के बरक्स हो, तो मेरा ख्याल है उन्होंने जो बात कही है सही है। हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम एयर पे गया। वकार खान साहब आप मेरे साथ हैं, मैं यहाँ दो बातें करना चाहती हूँ कि अभी इंडिया के बारे में हमने बात की कि इंडिया के दो तीन लोगों को ये अवार्ड ये एजाज दिया गया था, दो को फील्ड मार्शल का और एक को मार्शल का। जिन दो को फील्ड मार्शल का दिया गया था उनको एक में से रिटायरमेंट के बाद दिया गया था, वन वाज आफ्टर दे वन 71 की वॉर और जाहिर है बेशुमार लोगों ने अपने हथियार गिराए थे, और दूसरा जो था 65 के वॉर के हवाले से। तीसरा जिनको मार्शल का दिया गया था उनको भी एक्नॉलेज किया गया था। तो मेरा ख्याल है कि इस दफा पूरी दुनिया ने जिस हिसाब से कवर किया है अगर ये दिया गया है तो आई कैन से। वकार खान साहब आप मेरे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम सलाम बाजी, बस मैं दो बातें कहना चाहूंगा, आपका बिल्कुल तजिया सुन रहा था। एक तो यह है कि देखिये जो फील्ड मार्शल का ये जो सिलसिला है अचानक एकदम कहीं से आ गया, तो मैं गौरी साहब की बात से थोड़ा सा इत्तेफाक जरूर करूंगा, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा इत्तेफाक जरूर करूंगा कि जब आप ये देखें कि सारी चीजें ही जो है वो एक सिंध की तरफ चल रही हैं, तो एक ये और स्टेप भी हो गया, तो मेरे ख्याल में हमें कोई जो है वो अजनबे की बात हमारे लिए होनी नहीं चाहिए। जो पिछले दो ढाई तीन साल से चल रहा है उसमें ये एक और जो है वो स्टेप है, तो ये उसी का एक तसलसल चल रहा है। ये रहमत गौरी साहब जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, मैं उनकी बहुत इस हद से कदर करता हूं कि मतलब एक बंदा इतना एक्सपीरियंस है, मुल्क मुल्क आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसने मुल्क की बका को और मुल्क की चीज को इस तरह संभाल के रखा है कि कहां कहां वो अपनी जो एक्सपीरियंस बताते हैं, तो उससे ये कि हमें सीखना चाहिए। एक बंदे ने इतनी किताबें लिखी हैं, कुछ किया है, तो मकसद वो कुछ सोच समझ के ही जो है वो आपने उसको बुलाया और उसने बात की है ना। हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मकसद मेरे ख्याल में हम सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, कोई किसी पार्टी की तरफ, तो मेरे ख्याल में हमको रिस्पेक्ट ये देनी चाहिए कि पार्टी को बिल्कुल आप किसी एक तरफ हो लेकिन मुल्क को बस आप बुरा ना कहें, और मेरे ख्याल में वो मुल्क को कभी बुरा नहीं कहते, बस इतना ही कहना चाहूंगा।
सर आपका बहुत शुक्रिया। मैं अगर आप लोग मेरे साथ रहें, क्योंकि अब लंबा दौरानिया भी है, करामतुल्लाह गौरी साहब एक मेरे साथ आपने प्रॉमिस करना है कि कोई इंसान, हम एग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं मगर आप अपना बयानिया दे के बात कर लीजिएगा, तो आई ब्रिंग यू डायलॉग आपका अगला ट्यूसडे का जो प्रोग्राम है उसे, मगर उसमें ये बात ये कोशिश कीजिएगा कि कोई किसी को डिस्ग्रेस ना करे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। 9748 जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम,
अपना नाम बताइए और बात कीजिए।
जी मैं अनवार बोल रहा हूँ हेमंटन से
जी,
और गौरी साहब बहुत नफीस आदमी है, नो डाउट अबाउट इट, इट इज यू नो टॉकिंग है, डिबेट्स है, तो उसके अंदर सम टाइम इज अ हार्ड टॉकिंग और डिसएग्रीमेंट इज आल्सो इज गोइंग ऑन टू, बट ही इज अ नाइस पर्सन एंड वी गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम एंड the other thing is to be you know we are proud whatever our army did it in the back home, so I would say that we have to ready for everything and in future also, and we are support our army, but and what they did it is appreciable.
थैंक यू वेरी मच सर, आपका काम मनोवन गया है बिल्कुल, दिस इज योर प्लेटफॉर्म, इन दिनों टाइम भी है, आई टेक योर कॉल्स, दिस इज थर्ड लास्ट कॉल, आई टेक थ्री कॉल्स ओनली। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए और बात कीजिए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम
जी, मेरा नाम खालिद मीरा, मैं मुख्तसर तीन पॉइंट से बात करूंगा। गौरी साहब सफीर रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तानी एक्स जो है एम्बेसडर वो पाकिस्तान का नाम चेंज करने पे मजाक कर रहा है। सेकंड थिंग, आर्मी के मतलब बात हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके के ऊपर हमें छोटे डिस्प्यूट के ऊपर डिस्कस करना चाहिए रादर देन द बिगर वन। आर्मी ने कामयाबी हासिल की है, वो बात की बात है, हमारे इंटरनल इश्यूज हैं कैसे हैंडल करना है। थर्ड जो अभी इन्होंने आपने अभी डिस्कशन हुई है फील्ड मार्शल की, तो उसकी रीजनिंग ये है कि अय्यूब खान को मिला था 65 वार के बाद वो कामयाबी शो करने के लिए, इंडिया ने 71 में कामयाबी दी, इंडिया ने अपने जनरल को फील्ड मार्शल बनाया, ये पाकिस्तान ने इसलिए किया है अपनी कामयाबी को डिक्लेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच,
बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्लेन कर दिया इसको, थैंक यू वेरी मच। देखा फिर वही हुआ ना कि जो आरफा ने गलती करनी थी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हेलो, चिंदा बोलिए, कुछ बोलिए हजूर, मतलब बोलिए हजूर।
वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
बाजी, आप कैसे हैं, खरीद से हैं?
अपना नाम बताइए और बात कीजिए।
जी मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ, बस आपसे ये कहता कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की बात करनी चाहिए अभी हमें, और जो है कोशिश करनी चाहिए नेगेटिव बात न करे। रामतुल्ला और साहब को मैं हमेशा सुनता हूँ, लेकिन जो है मुझे हमेशा ही अफसोस होता है उनके थॉट पे, हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए और अपनी आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जुहैर साहब अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
जाफी साहब लाइनें ओपन है, तुसी भी अपनी गल कर लो।
मैं ही कहूंगा कि इस मौके पे से एक मुनासिब नहीं है, गौरी साहब ने कुछ और गौर करना चाहिए, उनका दुख कुछ और जिदा इजहार मुख्तलिफ तरीके ने करते ने, वाकई ये मौका नहीं चाहिए, लोग सही कह रहे हैं।
बहुत शुक्रिया जाफी साहब, ताड़ा पैगाम गया एयर से। जी 1364
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए और अपना पैगाम दे दीजिए।
जी जावेद इकबाल बोल रहा हूँ, मैंने नहीं सुना कि गौरी साहब ने क्या बोला, लेकिन पहले मैं हमेशा सुनता हूँ, अब पहले सुन रहा था, उस बीच में शायद मैंने थोड़ा बंद कर दिया था रेडियो, उन्होंने क्या बोला मुझे नहीं पता इस बारे में, तो लेकिन वो जो भी बात करते हैं वो हकायक से मबनी होती है, और मैं सिर्फ उसी दिन रेडियो सुनता हूँ छुट्टे वाले दिन जिस दिन वो आते हैं।
हाय मैं मर जाऊं, मैं तो वैसे ही फौत हो जाऊं,
तो मैं उन्हीं के लिए सुनता हूँ, वो सही बात कर। अभी ये जो फील्ड मार्शल का अपनी बात हो रही है कुछ ऐसे, तो फील्ड मार्शल क्या वो किंग बने हुए हैं, वो जो मर्जी पहले सारा कुछ उनके हाथ में है, फील्ड मार्शल बन जाए, शहनशाह बन जाए, किंग बन जाए, जो मर्जी बन जाए, अपना नाम रख ले, तो सारा कुछ उन्हीं का है, जिस हिसाब से जो जुल्म कर रहे हैं, जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, लोगों के ऊपर औरतों को नंगा कर रहे हैं, और ये सारा मुझे नहीं पता गौरी साहब ने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन जो भी वो बात करते हैं वो सही करते हैं, आज उन्होंने कुछ गलत बोला होगा।
नहीं, उन्होंने बस इसी टॉपिक पे बात की थी, इख्तलाफ राय है और इस वक्त ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हर इंसान का शख्स अपनी राय दे सकता है। बिल्कुल, मगर मैं ये फील्ड मार्शल के हवाले से अगर बात करूं, देखिए जी, इंडिया ने 3 लोगों को दिया, 2 को फील्ड मार्शल का, 1 को मार्शल का। 1971 की वॉर को भी एक्नॉलेज किया बिकॉज दे हैड अपर हैंड, 65 में दे हैड अपर हैंड, उसको भी एक्नॉलेज किया। उसी के बाद ये एक जो इनके जिसको मार्शल दिया गया था, अर्जन सिंह। तो मेरा ख्याल है कि दैट्स व्हाट इट इज, इस दफा जाहिर है अपना मोराल को बुलंद रखने के लिए दीज थिंग्स आर नीडेड। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। 1996 आप मेरे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी।
दिस इज लास्ट बाजी, क्या हाल है?
अल्लाह का शुक्र है
बाजी, कभी फोन भी उठाया अगर मेरा मतलब
चंदा फोन पे बात ही तो करी, उठाया तो है ना?
नहीं, मैं प्राइवेट सेल पे काम किया था आपको।
अब मैं रेडियो प्रोग्राम करी तो सेल पे कैसे कॉल ले सकती हूँ?
नहीं नहीं नहीं, वैसे मैंने और दिनों में किया था, बहरहाल अच्छा। कोई बात नहीं, सब ठीक है बाजी। बात यह है कि शेर अंडा दे, जंगल का बादशाह अंडा दे या बच्चा दे, ठीक है ना, उसे कबूल कर लेना चाहिए। गौरी साहब बहुत अच्छे तजिया लगा रहे हैं, मैं सुनता हूँ उनको खामोशी से, कोई बुरी बात नहीं कहते। जो जिसका जो है थॉट वो अपनी बयान कर सकता है, उसको हक है। जो पाकिस्तान में हो रहा है दुनिया में कहीं होता है? जिस मुल्क में जैसा कुछ हो रहा है हमारे साथ, वो आवाम के साथ, तो उस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे आप किसी सूबेदार को भी फील्ड मार्शल बना के देना, उसको भी कहना ये भी ये सूबेदार था, इसने बड़ी कुर्बानी दी। किसी नायब सूबेदार को, किसी सोल्जर को भी आप जो है ना फील्ड मार्शल का कोई अच्छा सा होता दें। इन्होंने जीता क्या है? अभी तो ये जंग ही जो है इन्होंने की है, दोनों पार्टियों ने मिलकर ड्रामा किया, अभी तो आने वाला वक्त बताएगा
ये
क्या हुआ।
ये तो आप, मैं माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, आई डेफिनेटली डिसएग्री विद यू।
ये तो वक्त बताएगा बाजी।
ठीक सर, बहुत शुक्रिया, आपकी राय बिल्कुल गई है। मैं बल्कि बाज औकात बाज लोगों के, जब
पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस जंग से भी बुरे हैं, इनको चाहिए कोई अकल को आसमा रहे।
बहुत शुक्रिया सर, आपका पैगाम एयर पे गया। 1996 आपका पैगाम एयर पे गया। 64 65 जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो
हेलो
जी, आप अपना नाम बताइए और बात कीजिए।
सलाम अलैकुम, मैं सलीम हसन आठवा एरिया से बात कर रहा हूँ।
आठवा से बात कर रहे हैं,
प्रोग्राम चल रहा है जनाब ओरी साहब के मुतालिक, तो क्या मैं बात कर सकता हूँ?
आप बिल्कुल एयर पे हैं सर
जी। मैं सलीम बोल रहा हूँ और ओरी साहब को मैं अक्सर सुनता रहता हूँ और मैं उनके बहुत कदरदान हूँ। माशाल्लाह बड़े सिंसियर और मुल्क और कौम से मोहब्बत करने वाले, बहुत तजुर्बाकार और नहायत उम्दा शख्सियत हैं और उन्होंने कौम और मुल्क के लिए बहुत खिदमत की है और अभी तक कर रहे हैं। और उनके दिल में जो मोहब्बत है और जो वो हकीकत जो देखते हैं वो कहते हैं, वो माशाल्लाह साफ गो हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे रहबर अता फरमाए जिनको विजडम भी हो और हकीकत भी हो और हक की बात करने से डरे नहीं। तो जहाँ तक इनका ताल्लुक है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ और मैं इनकी कदर करता हूँ और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही जीजा नसीब फरमाए। हमारी खुश नसीबी है कि वो आते हैं और अपने तजुर्बात और अपनी फरासत और अपनी दानिशमंदी हमारे साथ शेयर करते हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और सेहत और सलामती अता फरमाए। ये हमारी कौम और मुल्क के लिए बड़ा अजीम सरमाया है। अल्लाह ताला ऐसे रहबर सब कौमों को और मुल्कों को अता फरमाए।
बहुत शुक्रिया, सलाम। सलीम साहब ऑटवा से, विल टेक सम टॉप ऑफ द आवर, कम बैक प्लीज स्टे ट्यून्ड। मेरे साथ मेरे एक स्पॉन्सर, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पूरे ऑन्टेरियो में, आप कहीं भी हैं, यस पूरे ऑन्टेरियो में अगर आप कहीं भी हैं, کال پردیپ جی. پردیپ جی سن لائف کے ساتھ ہے, لیونگ ان دس کنٹری. آج بھی جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا ہے, بائی دا وے جو کل کا ایکسیڈنٹ بھی تھا دیٹ واز آلسو سنڈے کا, سنڈے کا ایکسیڈنٹ جس میں آپ دیکھیے گی اٹوبیکو میں رینفورڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ایک 19 سال کا لڑکا ڈرنک ڈرائیور جس نے اس کو کراس کرتے ہوئے دوسری سائڈ پہ ریمپ سے نکلتے ہوئے ہائی وے 41 سے ٹکر ماری تھی. دو بچوں کی ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ ہوئی تھی, ایک بچہ اور ایک ماں جو ہے اس کو ہاسپٹلائز کیا تھا. آج میں ابھی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے. یقیناً وی آر آل سیڈن بائی دا ڈیتھس. آج کا ایکسیڈنٹ کیلیڈن سے آتے ہوئے ایک ٹرک کا, ایک پک اپ وین کا اور ایک جو وہ پک اپ ٹرک ہوتا ہے, ان تین کا ایکسیڈنٹ ہوا. اٹس آلسو جو ایریل ویو ہے دیٹ از ٹیریبل. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے, ٹریول سیف.
برامپٹن شہر ایک انویسٹ اسپیشیز مینجمنٹ اسٹریٹجی تیار کر رہا ہے اور ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. آپ کی رائے مقامی پودوں, جانوروں اور ان قدرتی مقامات کے تحفظ میں مدد دے گا جن سے ہم سب لطف اندوز ہوتے ہیں. 29 اگست تک ہمارا مختصر سروے مکمل کیجیے اور 10 خوش نصیب پائیں گے پریسٹو کارڈ جس کی مالیت ہے $20, TRCA کنزرویشن ایریا فیملی پاس جس کی مالیت ہے $35, آنٹیریو پاس پاسز جن کی مالیت ہے $50. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے brampton.ca/invest.
میری پورے سال کی سیونگ $400 ہوئی ہے.
میری سیونگ $350.
میری سیونگ صرف $100.
اور میری سیونگ سب سے زیادہ ہوئی ہے, میں نے سیو کیے ہیں $1,775.
کیا چمتکار کیا, مجھے بھی گر سکھاؤ نا.
بھائی بات سادہ سی ہے, ہمارے پاس دو گاڑیاں اور ایک گھر ہے اور ان سب کی انشورنس ملا کر میں نے زبردست سیونگ کی ہے. اور یہ جادو کیا ہے آل اسٹیٹ پکرنگ ایجنسی کے راجا پاشا نے. آپ بھی اپنی گاڑی اور گھر کے انشورنس میں خوب سیونگ کر سکتے ہیں. ٹرم اینڈ کنڈیشن اپلائی. آل اسٹیٹ پکرنگ ایجنسی کے راجا پاشا 6472903773.
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کیجیے سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج.
142 کینیڈی روڈ, برامپٹن, 9058747171.
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو, ٹرک جدہ دا بھی چلاونے ہو, مینوئل جا آٹومیٹک, کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو. ٹرک دی بڑھیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب لو جی تیجی لوکیشن بھی کھولتی ہے, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. آہو جی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. کوئک ٹرک لیوب دا ون اسٹاپ شاپ, 5196220660 یا کوئک ٹرک لیوب .com. QTL, because we care.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca/gopsw ਤੇ ਜਾਓ. ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
عائشہ یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو؟
گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور مجھے 10 جگہوں پر جانا پڑے گا گروسری کے لیے.
10 جگہ کیوں, ایک ہی جگہ ہے, فاطمہ گروسرز.
فاطمہ گروسرز؟
جی ہاں, فاطمہ گروسرز. مسالے, تازہ سبزیاں, پھل, حلال گوشت, میرینیٹڈ میٹ آئٹمس اور اسپیشل بیف سٹیکس بھی. گروسری کا سارا سامان ساز و آواز کے ریفرنس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی. میکلاگلن اور برسٹل کے انٹرسیکشن پر نیو فاطمہ گروسرز, 512 برسٹل روڈ, ویسٹ آف مسز ساگا, 9058487000. فاطمہ گروسرز, سب سے زبردست.
سب پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر, میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں, ان سے ملاقات کرواتی ہوں آپ کی. ہمارا اس پروگرام کو, سیگمنٹ کو اسپانسر کر رہے ہیں جناب پردیپ جی. پردیپ جی سن لائف کے ساتھ تعلق ہے. سنس ہی کیم ٹو کینیڈا, دس از دا اونلی کمپنی ویئر ہی ورکڈ. ہی لیوڈ فار یو, ورکڈ with Sun Life. نہ صرف یہ کہ انشورنس دینا, بلکہ انشورنس کے بعد کسی بھی حادثے کی صورت میں آپ کے فارمز کو لک آفٹر کرنا, کلیمز کو لک آفٹر کرنا, कस्टमर सर्विस करना, दैट इज हिज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रदीप जी, एक बार फिर से आज के प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर.
वालेकुम अस्सलाम आरिफा जी, और आपके सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू द टॉक शो. एक बार फिर से आज हम लोग इंश्योरेंस के हवाले से बातचीत करेंगे.
आज का टॉपिक क्या है?
आज हम बातचीत करेंगे आरिफा जी कि लाइफ इंश्योरेंस में मेजर डेजिग्नेशन क्या होते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं 26 साल से इस फील्ड में अभी भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए. तो आज हम बात करेंगे मेजर डेजिग्नेशन इन अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. आरिफा जी,
मेजर डेजिग्नेशन, सो व्हाट डू यू मीन बाय दीज डेजिग्नेशन?
क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो और कोई भी सिचुएशन हो, उसमें कई ओहदे होते हैं. जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में सबसे पहला डेजिग्नेशन होता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तो होती ही आरिफा जी. दूसरा होता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर कौन है, यानी मालिक कौन है, जिसे कई जगह ओनर कहा जाता है, कई जगह उसको एप्लीकेंट कहा जाता है. तो ये ओनर कौन है और ये क्या उसके हुकूक हैं और क्या वो कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से. तो अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. लाइफ इंश्योरेंस फील्ड में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसकी दो साइड्स होती हैं. तो जो दो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें एक प्रिंसिपल होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और दूसरा प्रिंसिपल है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का मालिक कौन है. मालिक कोई भी हो सकता है, जो भी बनाया जाए, और वो मालिक जो है कई तरह के उसके पास राइट्स होते हैं. वो कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव कर सकता है और बहुत सारे चेंजेस वक्त बे वक्त करता रह सकता है जब तक वो ओनर है तब तक. तो ओनर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आरिफा जी,
बड़ी अजीब सी बात मैंने सुन ली. यानी हम तो एक बार इंश्योरेंस ली, लेके उसको लॉकर में रखा या दराज में फोल्डर में रखा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, मरने का इंतजार है. सो आपने कहा कि कीप ऑन चेंजिंग द डिसीजन. ये यानी अगर आपने कोई बेनिफिशियरी, क्या चेंज करें?
बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, मैं पहले बताता हूं. जैसे एक तो ओनर हो गया, दूसरा पोजीशन होती है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, लाइफ इंश्योर्ड. यानी किसकी लाइफ को इंश्योर किया जा रहा है, क्योंकि लाइफ इंश्योर्ड की ही डेथ पे डेथ क्लेम मिलेगा. ओनर भी खुद भी बन सकता है लाइफ इंश्योर्ड, या ओनर एक शख्स हो सकता है और लाइफ इंश्योर्ड कोई दूसरा शख्स हो सकता है.
अच्छा,
फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड ने पॉलिसी ली अपने बच्चों के ऊपर, तो वो ओनर है, क्योंकि बच्चे तो नाबालिग हैं, वो पॉलिसी के ओनर तो बन ही नहीं सकते. और अपने बच्चे को उसने लाइफ इंश्योर्ड बना दिया. तो लाइफ इंश्योर्ड बच्चा है, ओनर उसका बाप है. अब तीसरी बात आती है कि अगर लाइफ इंश्योर्ड की डेथ हो जाएगी तो पैसा किसको मिलेगा, डेथ क्लेम किसको मिलेगा? तो वो जिस शख्स को डेथ क्लेम मिलता उसको बेनिफिशियरी कहा जाता है आरिफा जी. यानी ओनर एक हो गया, इंश्योर्ड दूसरा हो गया, और बेनिफिशियरी तीसरी शख्सियत होगी. और यह भी हो सकता है कि ओनर खुद ही बन जाए कि भाई अपने बच्चे पे ले रहा हूं मैं पॉलिसी, लेकिन ओनर भी मैं हूं और बेनिफिशियरी भी मैं हूं. वो भी कर सकता है, वो मल्टीपल रोल्स इख्तियार कर सकता है. चौथी चीज आती है इसके बाद पेयर, कि इस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कौन देगा, क्योंकि पैसे भी देना बहुत जरूरी है. अगर आप पैसे नहीं देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. तो ओनर खुद भी पैसे दे सकता है, इंश्योर्ड पैसे दे सकता है, या बेनिफिशियरी पैसे दे सकता है, या कोई अलग शख्सियत पैसे दे सकती है. तो पेयर इज अ डिफरेंट डेजिग्नेशन. हो सकता है ओनर, बेनिफिशियरी और पेयर एक ही आदमी हो, या तो वो भी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आंसर
बड़ा जी, आज आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया. मिसाल के तौर पर एक हस्बैंड है, वो पॉलिसी लेता है, सो दिस इज द ओनली ओनर हु कैन चेंज द पॉलिसी. वो अपनी बीवी की लेता है और बीवी कल को कहेगी आई एम एन एडल्ट, आई कैन डू माय ओन डिसीजन, आई कैन चूज माय ओन बेनिफिट. हाउ वुड इट वर्क देन?
एक बार जब पॉलिसी बन गई, वाइफ इंश्योर्ड है और हस्बैंड ओनर है, पॉलिसी चल पड़ी, तो वाइफ उस पॉलिसी में कुछ भी नहीं कर सकती जब तक उसका हस्बैंड एग्री ना करे तब तक, क्योंकि हस्बैंड ओनर है. वाइफ की लाइफ पे इंश्योरेंस लिया गया है, वाइफ की डेथ पे पैसे मिलेंगे, लेकिन वाइफ के पास कोई भी رائٹس نہیں ہیں اس پالیسی میں کسی بھی قسم کی پھیر بدل کرنے کی.
بہت زبردست. میں آئی کوڈنٹ بلیو اٹ.
بٹ دیٹ از
آئی کوڈنٹ بلیو اٹ کہ ایک ایڈلٹ ایک مطلب میچور عورت ہے اس کی یا ایک ہسبینڈ ہے, وائف نے کال کیا اپنے ہسبینڈ کی انشورنس لینے کے لیے اور اس نے کہا سو ناؤ شی از دا اونر, وائف از دا اونر, شی کالڈ, بینگ وائف آئی کالڈ یو, آئی گاٹ انشورنس فرام مائی ہسبینڈ. میں پیمنٹ بھی ہم اپنے جوائنٹ اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں آپ کو. اب میرا بےچارا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی پالیسی چینج ہی نہیں کرا سکتا. یہ تو
ہاں, لیکن یہ چیز جو ہے یہ مانا جاتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں پہلے ہی ڈسکشن ہو جائے گا, کیونکہ جو پالیسی لی جاتی ہے کوئی بھی اونر وائف ہو سکتی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں, لیکن ہسبینڈ بھی جب تک سائن کر کے اپنی رضامندی نہیں دے گا پالیسی لیتے وقت, تب تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہسبینڈ انشورڈ ہے اور اس کی وائف اس کی اونر بن جائے. اگر ہسبینڈ سائن نہیں کرے گا تو وہ پالیسی نہیں بن سکتی, لیکن ایک بار ہسبینڈ نے سائن کر دیا ایز اے لائف انشورڈ, وائف بن گئی اونر اور پالیسی چل پڑی, تو پھر ہسبینڈ جو ہے اس پالیسی میں کوئی بھی چینجز نہیں کر سکتا اس کے بعد.
غدر ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اونر ہے ایک پیئر ہوگا ایک بینیفیشری ہوگا, یا ایک اونر ہے ایک انشورڈ ہے اور ایک بینیفیشری ہے, اب پریمیم کون پے کرے گا؟ اب ہسبینڈ بیوی نے بلایا, ہسبینڈ کی انشورنس لی اور جوائنٹ اکاؤنٹ سے پے کیا,
تو بھی کیا ہوا؟ اونر وائف ہے, جوائنٹ اکاؤنٹ سے پے کرے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ سے کہے کہ تمہاری میں لائف انشورنس لے رہی ہوں, پے بھی تم کرو, لیکن اونر میں ہوں اور بینیفیشری بھی میں ہوں. یعنی کہ اگر بیوی نے اپنے ہسبینڈ سے پالیسی لی, بھلے ہی اس کا ہسبینڈ منتھلی پریمیم دے رہا ہے نا, اور بیوی دن رات دعا کر رہی ہے کہ بھائی جلدی سے کلیم آ جائے, تو بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ
بیوی نے دعا, میں آپ کو قسمیاں کہتی ہوں, کوئی عورت اپنے آدمی کو
ایسا نہیں, میں ایک تو مذاق کی بات کر رہا ہوں.
کہنے
کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان میں آپس میں جھگڑا ہو جائے, عارفہ جی اب آپ دوسری طرح سے لیں, جو کہ میں دیکھ چکا ہوں بہت بار, ہسبینڈ وائف میں جھگڑا ہو جائے, طلاق بھی ہو جائے, تو بھی ہسبینڈ اپنی,
اچھا اب ڈائیورس بھی ہو جائے
تو بھی اونر بیوی ہی بنی رہے گی جب تک ہسبینڈ سائن کر کے, ہسبینڈ کو سائن کر کے نہیں دے دے کہ بھائی اب میں اونرشپ نہیں رکھنا چاہتی اپنے پاس, یا کمپنی سے بولے کہ اونرشپ چینج کر دو. تو کیا ہے کہ اب اگر جھگڑا ہوا, ہسبینڈ پالیسی میں انشورڈ ہے, وہ پیئر بھی ہے اور بینیفیشری بھی ہے اور اونر ہے, تو ہسبینڈ چلا بھی گیا گھر سے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے.
یہی سینیریو ہم ڈسکس کرتے ہیں, عورت نے انشورنس لی, ہسبینڈ نے پے کیا, شی از دا اونر, ہسبینڈ از دا انشورڈ, بوتھ آر انشورڈ بٹ دا اونر از
بوتھ مے بی انشورڈ ان ڈیفرنٹ پالیسی,
دونوں کی سیپریشن ہوگی. اب اگر ہسبینڈ چینجز کرنا چاہے کہ وی آر سیپریٹ, آئی ایم نو مور دیئر, اب میری دوسری بیوی ہے, تو وہ کیا ہوگا
اس کیس میں؟ ہسبینڈ جج کیا کر سکتا ہے؟ اگر اس کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے جا رہا ہے تو وہ کمپنی سے کہہ سکتا ہے بھائی اس اکاؤنٹ سے, یا بینک میں جا کے کہہ سکتا ہے اس اکاؤنٹ سے پالیسی کے پیسے اب نہیں جائیں گے, بینک روک دے گا پیسے ڈالنا, لیکن اونر وائف ہی بنی رہے گی. اور وائف اگر کمپنی کو بول دے کہ اگر ٹھیک ہے ہسبینڈ نے اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا, میں دوسرا اکاؤنٹ دیتی ہوں, اس میں سے پیسے نکالو, ہسبینڈ کے اوپر انشورنس ویسا کا ویسا ہی رہے گا, تو وہ ویسا کا ویسا ہی چلتا رہے گا.
او مائی گاڈ, سو وائی ڈو پیپل چینج اونرز اور بینیفیشریز؟ اگر بیوی چینج ہی نہیں کرنے دے گی اونرشپ تو پھر کیا ہوگا؟
اونرز پھر کب چینج ہوتے ہیں؟ اگر مان لیا میں اپنے بچوں پہ پالیسی لیتا ہوں, وہ نابالغ بچے ہیں اور میری ایک دم آئیڈیاز کلیئر ہیں اور ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں کہ بچے بڑے ہو جائیں, ریسپانسبل ہو جائیں, تو میں اونرشپ ان کو ٹرانسفر کر دوں گا. تو سنگل لائف پالیسی جو ہوتی ہیں حریفہ جی, جن کو اس مقصد سے دیا جاتا ہے, کل کو والدین ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اب بچے بالغ ہو گئے, ان کی پالیسی انہی کے حوالے کر دی جائے, تو اس پہ کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوتا. یہ تو کلیئر کٹ ایک آپ نے بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا. دوسری پریشانی کب آتی ہے کہ ایک ہسبینڈ نے اپنی وائف پہ پالیسی لی اور انتقال کر گیا ہسبینڈ, تو بھی تو اونرشپ چینج ہونی کرنی پڑے گی نا, کیونکہ اب اونر ہے ہی نہیں. تو کئی بار اونر چینج کرتے ہیں اونرشپ جب ان کو لگتا ہے ان کے بچے بڑے ہو گئے, یا وائف اب ہینڈل کر سکتی ہیں, یا کچھ اور بات ہے, اور یا ان کی ہیلتھ اب خراب ہو گئی کہ اب میں نہیں ہینڈل کر سکتا, یا اس کی ڈیتھ ہی ہو جائے, तो उसके बाद भी तो पॉलिसी चलनी है, इसलिए इन सिचुएशन में ओनरशिप चेंज करनी पड़ती है।
बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। एक क्वेश्चन आया, मैं एज सच रीड करके आपसे कहती हूँ, वो ये है कि फ्रॉम योर एक्सपीरियंस व्हाट वुड यू रिकमेंड एज द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स होल्डिंग दीज डेजिग्नेशंस।
आरिफा जी, मैं तो ये ख्याल रखता हूँ कि जो भी काम किया जाए लाइफ इंश्योरेंस के मुतालिक लंबी प्लानिंग और विजन के साथ करना पड़ेगा। विजन के साथ ये कि भाई मैं पॉलिसी ले रहा हूँ वाइफ के ऊपर, वाइफ को तुम इनकरेज करो कि भाई तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है जब लेडीज इंटरेस्ट नहीं लेती। बिल्कुल इंटरेस्ट लो और तुमको जो हेल्प चाहिए मैं तुमको हेल्प प्रोवाइड करूंगा। तो उस केस में हस्बैंड कर सकता है कि वाइफ की पॉलिसी है, हो सकता है हस्बैंड पैसे दे, आज वो होम मेकर हो, उसकी अपनी इनकम ना हो, या ज्वाइंट अकाउंट पैसे जाएंगे, लेकिन हस्बैंड को इनकरेज करना चाहिए कि भाई वाइफ को ओनर बनाया जाए। और अगर वाइफ किसी तरह ओनर बनने को राजी ना हो, क्योंकि ऐसी भी लेडीज हैं हम देखते हैं, तो उसको कम से कम कंटिंजेंट ओनर बना दिया जाए, ताकि हस्बैंड की डेथ हो तो फौरन डेथ सर्टिफिकेट कंपनी को भेजे और ओनरशिप बगैर किसी माथा पच्ची के ट्रांसफर हो जाए वाइफ के नाम पर। क्योंकि अगर इंश्योर्ड वाइफ है और पॉलिसी को आगे चलाना है तो देर इज अ डेजिग्नेशन कॉल्ड कंटिंजेंट ओनर, कि अगर मैं ओनर हूं, मेरी वाइफ कंटिंजेंट ओनर है और डेथ हो जाती है मेरी यानी ओनर की, तो वो सिर्फ क्लेम वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को डेथ सर्टिफिकेट देगी हस्बैंड का और ओनर।
तो अगर वो ना इन्फॉर्म कर सके या उस बिचारी को ना पता हो या उसको याद ना हो तो फिर क्या होगा?
उसको फिर प्रॉब्लम पॉलिसी प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर कंपनी लेटर भेजेगी या फिर हो सकता है कि बैंक पैसा नहीं क्लियर करेगा। और इन सब का हल सबसे आसान है कि जब लाइफ इंश्योरेंस लिया जा रहा है, एक तो लेडीज को अभी फर्ज है कि उस डिस्कशन में शामिल हो। बहुत सारी लेडीज तो इस चक्कर में रहती है कि मैं शॉपिंग को जा रही हूं या मैं किचन में जा रही हूं, मेरे पास आना, कहां साइन करना है बताना, मैं वहां साइन कर दूंगी, इससे ज्यादा मेरा वक्त बर्बाद ना करो, है ना, मुझे कोई चीज से मतलब नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हुए इस दुनिया में, उनको कितने ही समझा लें वो नहीं मानेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी या कभी भी हो सकती है।
अपना नंबर दी प्रदीप जी आपने, चीजें अपना नंबर ही नहीं दिया।
416-894 आपने पूछा ही नहीं, अगर मैं नंबर आपको बता तो शायद आप मेरे को भी कॉल पे ले लेती, है ना। 1391-0275 उनके साथ मेरा भी नाम शामिल हो जाता। 416-894-5872 आरिफा जी,
894-5872 प्रदीप जी सन लाइफ के साथ हैं
पिछले 26 साल से।
26 साल से आप अपनी बच्चों की, और मैं एक बात आपसे कहती हूँ, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऑनेस्ट टू गॉड आई डिड नॉट हैव वन, मुजफ्फर का जब मामला हुआ, आई विश आई, शायद मैं इतनी स्ट्रगल मुझे ना करनी पड़ती अपनी जिंदगी की। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है, अल्लाह ने मुझे किसी का मोहताज नहीं किया। बट यस, जब फिर उसके बाद यू नो व्हाट आई ट्राइड कि मेरा अगर कुछ हो तो कम से कम ये ना हो कि मोहम्मद अली कोलीफ का नाम कोको नहीं आता। तो बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे पास अब भी नहीं है, एटलीस्ट इतनी कि वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर सके, अगर चीजें चलती रहें तो दैट्स ऑल व्हाट इट इज।
आरिफा जी मैं आपको एक बताऊं, अगले पल का कुछ पता नहीं होता हमें। एक मेरे पास क्लाइंट थे अभी कुछ टाइम पहले की बात है, उन्होंने कहा कि भाई मैंने पॉलिसी रख ली है 12-13 साल, अब मैं सोच रहा हूं उसको फारिग कर दूं और ये कर दूं वो कर दूं, है ना। और तीन, तो मैंने कहा कि चलो एक मीटिंग करके देख लेते हैं कि आपको अगर जरूरत नहीं तो फिर जो आप कहेंगे वो करेंगे। तो ये तय हुआ कि 3 महीने बाद मीटिंग की जाए, क्योंकि 3 महीने के लिए वो बाहर जा रहे थे, आउट ऑफ कंट्री। 3 महीने का वक्त पूरा नहीं हो पाया कि मेरे पास कॉल आया कि उनको एक बहुत शदीद किस्म का कैंसर डायग्नोज हुआ है और उनके पास डॉक्टर ने सिर्फ 3 से 5 हफ्ते का टाइम दिया। और आप सोचें कि पॉलिसी कैंसिल क्यों नहीं हुई, क्योंकि 3 महीने बाद डिस्कशन होना था और 3 महीने के अंदर अंदर क्लेम भी पास होके उनके फैमिली को चला गया। तो ये कहना बहुत गलत है कि अब तक जरूरत नहीं पड़ी तो आगे भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्या होने वाला है आगे अगले पल में ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, हम सब नहीं जानते। हम सब सोचते रहते हैं तरह तरह से, लेकिन हम सोच ही सकते हैं, लेकिन क्या होने वाला है वो सिर्फ मालिक ही डिसाइड कर सकता है।
प्रदीप जी अपना नंबर एक बार फिर से,
416-894 5872 आरिफा जी, और एक आपकी इजाजत हो एक बार धीरे धीरे बोल देता हूं, 4168945872
अच्छा अगर कोई पंजाबी में कहे तो फिर कैसे बताएं?
आप ही कही कह दीजिए ना आरिफा जी, आप ही हिस्ट्री की क्लास में ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए
तो ये मगर आज कोशिश करें आप पंजाबी
नहीं जी आप करें, मैं उसके लिए अपनी वाइफ को लेके आता हूँ।
8945 5872 58 72 ठीक है, 894 5872
चले वो भी चल जाएगा।
देखिए अंजुम कुरैशी अगर पंजाबी में अपना नंबर बोल सकती है तो आपको भी आना।
अंजुम कुरैशी जी तो और भी बहुत सारे काम कर सकती हैं।
894
सो सक्सेसफुल एंड सो गुड टू टॉक टू।
894 5872 8945872 अच्छा प्रदीप जी बहुत प्यारे हैं, आपके लिए गाना हमेशा एक लेके आया करते हैं, हालांकि मैंने गाना एक निकाला था, मेरा दिल था आपको मैं गाना सुनाऊं, ये शाम मस्तानी
अगली बार सुनेंगे,
मदहोश किए जा मेरी ओर।
अभी कई लोग कहने लगे मद का मतलब होता है शराब, है ना, कई लोग कहने लगे कि हमारे यहाँ लोगों को शराब के लिए इनकरेज कर रहे हो। मद का जो शब्द है ये मदिरा से बना है, मदिरा का मतलब शराब और मद का मतलब नशा।
नशा तो जी पैसों का भी हो सकता है।
हाँ
नशा नॉट नेसेसरी, कोई भी नशा बुरा है, नशा तो ताकत का भी हो सकता है, नशा पैसे का भी हो सकता है, नशा हुसन का भी हो सकता है।
बिल्कुल
ठीक है, तो बहरहाल आई साहब ओ नीले पर्वतों के की धारा चले जी,
नीले पर्वतों
नीले, आपको गाना आता है भाई कभी?
नहीं नहीं मुझे नहीं आता।
आता तो होगा,
अरे मुझे गाना आता होता तो कब का मेरा ही बेनिफिशरी बदल गए होते।
कैसा लगा?
बिल्कुल अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा फोन नंबर मेरी वाइफ नहीं सुन लिया हो, नहीं तो मेरी क्लास हो जाएगी।
416-894-5872 ये फिल्म थी धर्मेंद्र और शायरा, उसका महिंद्रा कपूर और उनके ऊपर 1970 की फिल्म। साहब ये फिल्म 1970 की फिल्म थी, आदमी और इंसान है, आदमी और इंसान, वैसे तो पता नहीं इंसान को क्या हो गया, मगर आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज थी। तो मेरा वैसे दिल करता है मैं आपको जगजीत सिंह का भी चले मैं जगजीत सिंह से भी गजल आपको सुनाऊंगी, मगर उससे पहले स्पॉन्सर्स दो चार ले लें। तो प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, बहुत शुक्रिया ड्यूरिंग द प्रोग्राम जिन लोगों ने मुझे कॉल करके कहा कि पीछे से म्यूजिक की आवाज आ रही है, हालांकि मैंने तो स्टाइल मटाइल मारा था, स्टाइल मटाइल का मतलब है कि मैंने पीछे से बैकग्राउंड लगाई थी। देन एक कॉल आती है, उन्होंने मुझे कहा देखिए ना ये वाली कॉल है 3878, आपने मुझे कॉल करके कहा, और 8191 आपने मुझे कॉल करके कहा कि पीछे से आवाज आ रही है, एक और कॉल है उन्होंने मुझे कहा ये नंबर है 1324 है 1324 1234 नंबर अब कर लेते तो क्या फर्क पड़ता था। तो वैसे आप प्रदीप जी का नंबर नोट कर लीजिएगा, प्रदीप जी का नंबर 4168945872। मैं दो न्यूज की तरफ लेके जाना चाहूंगी और न्यूज इन डिटेल शाजिया साहब आपकी खिदमत में पेश करेंगी, मगर प्रदीप जी आपका बहुत शुक्रिया फॉर योर ऑन गोइंग सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। एक न्यूज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, गाजा के बारे में शेयर करना चाहती हूँ, इसराइली फौज के जो साबिक डिप्टी चीफ ऑफ द स्टाफ है, अगेन आई एम हियर टू कवर द न्यूज, इसराइली फौज के साबिक, क्योंकि ये दो न्यूज इसराइल से मुतालिक हैं एंड वन इज डायरेक्टली विद कनाडा। आपको याद होगा कि कल बरतानिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने कदगन लगाई थी, कल हमने न्यूज कवर की थी, उसका सेकंड पार्ट भी मैं कवर करूंगी। इसराइली फौज के साबिक डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑपोजिशन पार्टी के रहनुमा यायर गोलान ने बेंजामिन नतन्याहू की हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि गजा में बच्चों को मारना हमारा मशगला बन गया और बतौर रियासत हम आलमी तन्हाई के खतरे से दो चार हैं। यहां पर मैं बताना चाहती हूं कि बेंजामिन नतन्याहू जो हैं ऑफ कोर्स ही फील्स लिटिल एलियनेटेड, हालांकि वो उन्हें बड़ा फखर था कि वो दो बार प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल चुके हैं, वाज द फर्स्ट वन टू कम आफ्टर ही बिकेम द प्रेसिडेंट, सेकेंडली जब टैरिफ्स का मामला आया तब भी वो पहले आए, मगर अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब मिडिल ईस्ट का दौरा किया तो इसराइल का विजिट नहीं किया और वो एक ही कहते रहे कि आप इसी दौरे में आए, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नेक्स्ट टाइम अनदर टाइम। यहां पर एक और फैसला जो उन्होंने किया था कि यमन में होती बाजियों होती इसके बारे में कि वो जब अटैक कर रहे थे रेड सी में अमेरिका के जहाजों के ऊपर, तो अमेरिका ने उनके साथ भी डील की कि आप हमारे जहाजों को अटैक नहीं करेंगे, मगर इसराइल के जहाजों पे आप अटैक कर सकते हैं, सो उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर भी शेलिंग करना या बमबारी करना बंद कर देंगे। सो ऑफकोर्स इट वॉज वेरी ऑफेंसिव फॉर बेंजामिन नतन्याहू और इसराइल की जो इस वक्त की हुकूमत है। तीसरी चीज कि उन्होंने शाम के जो प्रेसिडेंट हैं बशार, जो नए प्रेसिडेंट हैं, उनसे उन्होंने खास तौर पर मुलाकात की, एंड आई बिलीव यूनाइटेड अरब इमारात में इसकी ये मुलाकात हुई थी जिसने रिजर्वेशंस इसराइल के दिमाग में डाली। अभी रिसेंटली इन चार पांच मुल्कों ने कल का जो बयान था उसके बाद अब बेंजामिन नतन्याहू के अगेंस्ट उनकी डिस्लाइकिंग भी बहुत बढ़ गई है और ऑपोजिशन पार्टी ने यह लफ्ज कहा है कि ये जो कंटिन्यूसली गजा पे कार्रवाई बेंजामिन नतन्याहू और वो कर रहे हैं वो इसराइल को बिल्कुल तन्हाई कर देंगे। ये जो बयान है कि गजा में बच्चों को मारना हमारा मशगला बन चुका है, ये इसराइली फौज का एक एतराफ है। यहां पे जो यानी ये डिप्टी चीफ ऑफ द स्टाफ और ऑपोजिशन पार्टी के रहनुमा भी हैं, जाहिर ऑपोजिशन पार्टी, उन्होंने ये कहा है कि हम इसराइल इन द लॉन्ग रन आलमी तन्हाई का सबब बन जाएगा। ये अमेरिका के एनबीसी के मुताबिक इसराइल की डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और साबिक जनरल ने मुकामी रेडियो स्टेशन को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि एक बाशऊर मुल्क आम शहरियों के खिलाफ जंग नहीं लड़ता, बच्चों को नहीं मारता, मगर उन्होंने कहा कि इसराइल का ये मशकरा बन गया कि बड़े पैमाने पर आबादियों को बेदखल भी किया जाता है, बच्चों को मारा भी जा रहा है। उन्होंने जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्ती दौर हुकूमत से इसराइल के इकदाम का मुवाजना करते हुए कहा कि यहूदी कौम ने तारीख में जुल्म, कत्लेआम, नस्ल कशी का सामना किया, यानी यहूदी देमसेल्व्स दे सफर्ड अ लॉट, اب خود ہی وہ اقدامات کریں جو جن کو انہوں نے فیس کیا تھا، انہی اقدامات یہ خود لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے سابق فوجی کے بیان پر شدید غم اور غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ الزامات ہمارے بہادر سپاہیوں اور ریاست اسرائیل کے خلاف اشتعال انگیز ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے بیان کو حاضر سروس اور ریزرو فوجیوں کے خلاف نفرت انگیز اور جھوٹا پروپیگنڈا، بیکاز ہی از اپوزیشن کے ایک لیڈر بھی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ انہوں نے کہا ہے کہ گولان جان بوجھ کر جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک نے یائر گولان کو بہادر اور صاف کو، یعنی جو سابق وزیر اعظم انہوں نے ان کو اپوزیشن لیڈر کو بہادر اور صاف، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ریڈیو پہ بھی یہی ہوا تھا۔ نتن یاہو نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ غزہ میں مکمل قبضہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ حماس کو شکست دی جا سکے اور 58 یرغا مالیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے جو اب بھی حماس کی قید میں، جن میں سے 23 کے بارے میں خیال ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے دوسرے شہر خان یونس کے تمام شہریوں کو فوری جبلی انخلا کا حکم بھی دے دیا تھا۔ برطانوی حکومت نے غزہ میں وحشیانہ فوجی کاروائیوں پر اسرائیل کے ساتھ تجارتی مذاکرات معطل کر دیے۔ اب اس نیوز کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتی ہوں، اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو بتائیے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کینیڈا، انگلینڈ، فرانس اور جرمنی، ان لوگوں نے یقیناً اپنے جو تجارتی مراسم ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بند کیے ہیں۔ میں آئی واز نیور انیتا آنند کے بارے میں، میری آئی نیور تھاٹ کہ شی از سچ اے بولڈ پولیٹیکل لیڈر، بٹ آفٹر ٹیکنگ اوتھ انیتا آنند جب باہر آتی ہیں تو ان سے پوچھا گیا، سٹانس پوچھا گیا اباؤٹ اسرائیل، شی 100% سپورٹڈ پیلسٹائن، کہ پیلسٹائن میں جو فوڈ نہیں پہنچا، یعنی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ انہوں نے بات کی کہ آپ ظلم جبر کرتے ہیں، جو فوڈ نہیں پرووائڈ کی جا رہی، پانی نہیں پرووائڈ کیا جا رہا، ان کو میڈیسن نہیں دی جا رہی، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ اینڈ ناؤ دیر از اندر پروپیگنڈا گوئنگ آن کہ میلانی جولی واز اگینسٹ، دس از واٹ پیپل آر سیئنگ، سم پیپل آر سیئنگ کہ میلانی جولی پروبیبلی واز اگینسٹ اسرائیل اینڈ شی واز سپورٹنگ غزہ، اینڈ سیم وے انیتا آنند۔ بٹ ناؤ دا کینیڈین کانسپٹ اور کینیڈین جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے لے آتی ہوں۔ اسرائیل کینیڈا کے رد عمل پر حیران، وزیر اعظم کارنی سے دورہ کرنے کی درخواست۔ اسرائیل کے سفیر نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر کارنی جو ہے ان کو وزٹ کرنا چاہیے اسرائیل کو۔ اسرائیل کے سفیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک کینیڈا کی جانب سے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف ممکنہ اقدامات کی دھمکی پر خاصا حیران ہے، اور مارک کارنی پرائم منسٹر آف کینیڈا کو چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا دورہ کرے۔ یہ ایک بے مثال قدم ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا، اس لیے ہم حیران ہیں، بلکہ یہ کہنا بھی کم نہ ہوگا۔ پیر کو کینیڈا، برطانیہ اور فرانس نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس اور مشترکہ بیانیے میں غزہ میں فوجی کاروائیوں میں توسیع کی مذمت کی اور اسے بے حد غیر متناسب کہا، کہ یعنی آپ جس حساب سے بچوں کو مار رہے ہیں، فوڈ نہیں پرووائڈ کر رہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیل نے اعلان کیا کہ غزہ میں زمینی کاروائیوں میں اضافہ کرے گا، خوراک اور امداد کی کچھ مقدار داخلے کی اجازت دے گا۔ تینوں ممالک نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ اس نے فوجی کاروائیاں اگر نہ روکیں اور انسانی امداد پر پابندیاں نہ اٹھائیں تو وہ مزید ٹھوس اقدامات کریں گے۔ منگل کو برطانوی حکومت نے مغربی کنارے کے آباد کناروں لوگوں پر پابندیاں لگائی تھی۔ اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے پر بات چیت کو یکسر معطل کر دیا گیا تھا۔ اب کینیڈا کی پوزیشن اس میں کیا ہے؟ وزیر اعظم مارک کارنی نے ابھی تک اپنی ایکچوئل پوزیشن نہیں دی، مگر جو انیتا آنند ہیں ہماری منسٹر آف فارن افیئرز، انہوں نے یقیناً اپنے بات، انہوں نے اپنی فرسٹ پریس کانفرنس، یعنی ونس شی ٹک دا اوتھ، شی کیم آؤٹ، اور ایک نمائندے نے جب ان سے، جرنلسٹ نے جب ان سے پوچھا، انہوں نے بڑا واضح پہ کوئی بھام نہیں تھا۔ کینیڈا پہلی مغربی کنارے میں تشدد میں ملوث افراد پر پابندیاں لگا چکا ہے، برطانیہ نے اب پابندیاں لگائی ہیں۔ برطانیہ بھی نئی آبادکاری کی مخالفت کرتا ہے، کینیڈا بھی نئی آبادکاری کی مخالفت کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا اس پر رد عمل، انہوں نے ट्विटर पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा इसराइल से इसकी दिफाई जंग रोकने को हमास जैसे दहशतगर्द ग्रोह के लिए एक बड़ा इनाम है। जनाब बेंजामिन नेतन्याहू ने याद दिलाया कि अक्टूबर 2023 में हमास के हमले में 1200 लोगों की, ये 7 अक्टूबर 2023 का जिक्र कर रहे हैं, और उन्होंने कहा 251 लोगों को यरगमाल किया गया था जिनमें से 58 अभी तक यरगमाल हैं। और मजे की बात यह है कि कैनेडियन और अमेरिकन प्रेस के बहुत से लोग ताहाल इसी के लिहाज से बात भी कर रहे हैं, वेराज दुनिया के बहुत से ममालिक, खासतौर पे अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, बरतानिया की बात करते हैं, एंड नाउ ऑफ कोर्स कनाडा की बात करते हैं। अनदर थिंग इज अ न्यू ओथ टेकिंग जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर है जनाब नीता आनंद, अगर उन्होंने खुल के इसके बारे में बयान दे दिया तो दिस मीन्स समथिंग ग्रेट फ्रॉम दीज कंट्रीज। जनाब प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने उन्होंने कनाडा की जो सेंटर ऑफ इसराइल एंड ज्यूश अफेयर्स है उन्होंने कहा था कि हमास को हथियार डालने चाहिए उसे गजा, ये इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने ये लफ्ज कहा था, प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने, इस वक्त जो उनका बयान यह है बिल्कुल टोटल मुख्तलिफ है, मगर इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमास को हथियार डाल देने चाहिए। इंसानी बहरान और बैन अक्वामी दबाव, अक्वामी मुत्तहिदा गजा में 53,000 से ज्यादा फलस्तीनी, दिस इज अ नंबर बट दिस नंबर इज मच हायर देन दिस, 53,000 से मच हायर है। आप इमेजिन कीजिए कि वहां कोई इमारत ही नहीं रही, एक एक घर के साथ साथ बंदों की डेथ हुई है। कहते हैं इनमें ज्यादातर तादाद बच्चों की और औरतों की है। गजा की वजारत सेहत हलाक शुदगान में जंगजू और शहरियों के दरमियान तफरीक नहीं करती, बेशुमार जंगजू मरे हैं, बेशुमार शहरी भी मरे हैं, भूख और अफलास का दौर दौर है वहां पे। इसराइल के सफीर का मौकफ है, उन्होंने कहा ये जो जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को इनवाइट भी किया है, उन्होंने कहा कि हमास को खत्म करने और बाकी 58 यरगमाली को बाजियाब कराने पर इसराइल की तवज्जो है। उन्होंने इसराइल के जो सफीर है उन्होंने इस बात पर तबसरा करने से गुरेज किया कि अगर कनाडा ने मजीद कार्रवाई की तो इसराइल का रद्दअमल क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने बात करने से इनकार किया। जो वहां के सफीर हैं उन्होंने कहा कि कनाडा और इसराइल के दरमियान राबते जारी हैं, दोनों ममालिक ने हालिया दिनों में गजा में इमदाद पहुंचाने के इकदाम पर बातचीत भी की है। इसराइल का मौकफ है कि दर्जनों इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो चुके हैं, हमास इमदाद चुरा रही है और वो हमास जो है वो जो कुमक पहुंच रही है वो ले जाते हैं और आम शहरियों को कुमक में, हाउ इट इज पॉसिबल। बहरहाल दिस इज अ न्यूज आई हैव टू कवर मन ऑन। अक्वामे मुत्तहिदा की इमदादी सरबराह ने कहा है कि जो इमदाद गजा में पहुंच रही है वो एक समंदर में कतरे के बराबर है, और जो इसराइल के वजीर जो सफीर हैं उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि वो यकीनन इसराइल का दौरा करें। वजीर आजम कार्नी को उन्होंने कहा कि खुद इसराइल आकर जमीनी हकायक देखना चाहिए ताकि उन्हें सूरत हाल को बेहतर समझ सके। उन्होंने कहा कि खासतौर पर जरूरी है कि कार्नी दो रियासती हल टू स्टेट सोल्यूशन के खिलाफ इसराइल की पोजीशन समझ सके। कनाडा बिल्कुल ये चाहता है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, वेयर एज इसराइल डजंट वांट टू स्टेट सोल्यूशन एट ऑल। ये तो थी आज की सूरत हाल। सुन रहे हैं प्रोग्राम साज़ो आवाज़ में आपके साथ आरिफा मुजफ्फर। मेरा दिल चाहता था मैं एक आपको गजल सुनाती हूं, मुझे तो काश गाना गाना आता, अल्लाह मियां गंजे को नाखून ही नहीं चाहिए। साहब गद्दी तो चित्रा जी की कोठे दे आम आई आप साहब इंजॉय करें अपनी जिंदगी को।
लेना है मित्रा तो की लेना है मित्रा तो मिलन ते आ जावा डर लगता है छित्रा तो मिलन ते आ जावा डर लगता है छित्रा तो
सारे दंद पे कट देने सारे दंद पे कट देने असी तेनू चंगे लगदे ते साडे धीआं पुत वट देने असी तेनू चंगे लगदे साडे धीआं पुत वट देने मजा प्यार दा चख लांगा मजा प्यार दा चख लांगा जे तेरा हुक्म होए मैं ता दाढ़ी भी रख लांगा जे तेरा हुक्म होए मैं ता दाढ़ी भी रख लांगा तुसी रोज नहाया करो तुसी रोज नहाया करो मक्खियां तो डर दे ओ गुड़ थोड़ा खाया करो मक्खियां तो डर दे ओ गुड़ थोड़ा खाया करो प्यार दी मांगे पिंग प्यार दी मांगे हुण असी मिल गए दीप प्यार दे गावांगे हुण असी मिल गए हुण रोज नहावांगे
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca/gopsw ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660